दूसरा तवारीख 28वां बाब। आखिज 20 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वो ना किया जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है, जैसा उसके बाप दादा ने किया था, बल्कि इसराइल के बादशाहों की राहों पर चला और बालेम की ढाली हुई मूर्तें भी बनवाई। इसके सिवा उसने हनोम के बेटे की वादी में बखोर जलाया और उन कौमों के नफरती दस्तूरों के मुताबिक जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के सामने से खारिज किया था, अपने ही बेटों को आग में झोंका। उसने ऊंचे मुकामों और पहाड़ों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे कुर्बानियां की और बुखोर जलाया। इसलिए खुदावंद उसके खुदा ने उसको शाहे आराम के हाथ में कर दिया। सो उन्होंने उसे मारा और उसके लोगों में से असीरों की भीड़ ले गए और उनको दमिश्क में लाए, और वो शाहे इसराइल के हाथ में भी कर दिया गया, जिसने उसे मारा और बड़ी खूनरेजी की। और फिखा बिन रमलिया ने एक ही दिन में यहूदा में से 120,000 को, जो सब के सब सूरमा थे, कत्ल किया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया था। और जेकरी ने, जो इफ्राइम का एक पहलवान था, मासिया शहजादा को और महल के नाजिम अजरी कायम को और बादशाह के वजीर अलकाना को मार डाला, और बनी इसराइल अपने भाइयों में से 200,000 औरतों और बेटे बेटियों को असीर करके ले गए और उनका बहुत सा माल लूट लिया और लूट को सामरिया में लाए। लेकिन वहां खुदावंद का एक नबी था जिसका नाम औदद था। वो उस लश्कर के इस्तकबाल को गया जो सामरिया को आ रहा था और उनसे कहने लगा, देखो, इसलिए कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा का खुदा यहूदा से नाराज था, उसने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया और तुमने उनको ऐसे तैश में कत्ल किया है जो आसमान तक पहुंचा। और अब तुम्हारा इरादा है कि बनी यहूदा और यरूशलेम को अपने गुलाम और लौंडियां बनाकर उनको दबाए रखो, लेकिन क्या तुम्हारे ही गुना जो तुमने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ किए हैं तुम्हारे सिर नहीं है? सो तुम अब मेरी सुनो, और उन असीरों को जिनको तुमने अपने भाइयों में से असीर कर लिया है आजाद करके लौटा दो, क्योंकि खुदावंद का कहरे शदीद तुम पर है। तब बनी इफ्राइम के सरदारों में से अजरिया बिन यहू हन्नान और बरकिया बिन सलुमोत और यहस्किया बिन सलूम और उमासा बिन खदली उनके सामने, जो जंग से आ रहे थे, खड़े हो गए और उनसे कहा, तुम असीरों को यहां से नहीं लाने पाओगे, क्योंकि जो तुमने ठाना है उससे हम खुदावंद के गुनहगार बनेंगे और हमारे गुनाह और खताएं भर जाएंगी, क्योंकि हमारी खता बड़ी है और इसराइल पर कहरे शदीद है। सो उन हथियार बंद लोगों ने असीरों और माले गनीमत को अमीरों और सारी जमायत के आगे छोड़ दिया, और वो आदमी जिनके नाम मजकूर हुए उठे और असीरों को लिया और लूट के माल में से उन सबों को जो उनमें नंगे थे लिबास से आरास्ता किया और उनको जूते पहनाए और उनको खाने पीने को दिया और उन पर तेल मला और जितने उनमें कमजोर थे उनको गधों पर चढ़ाकर खजूर के दरख्तों के शहर यरहू में उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब सामरिया को लौट गए। उस वक्त आखिज बादशाह ने असोर के बादशाहों के पास कहला भेजा कि उसकी मदद करें, इसलिए कि अदोमियों ने फिर चढ़ाई करके यहूदा को मार लिया और असीरों को ले गए थे। उस वक्त आखिज बादशाह ने असोर के बादशाहों के पास कहला भेजा कि उसकी मदद करें, इसलिए कि अदोमियों ने फिर चढ़ाई करके यहूदा को मार लिया और असीरों को ले गए थे, और फिलिस्तियों ने भी नशेब की जमीन के और यहूदा के जनूब के शहरों पर हमला करके बैत शम्मस और आलियोन और जदरोत को और शोको और उसके देहात को और तिमना और उसके देहात को और जेमसू और उसके देहात को भी ले लिया था और उनमें बस गए थे, क्योंकि खुदावन ने शाह इसराइल आखस के सबब से यहूदा को पस्त किया, इसलिए कि उसने यहूदा में बेहयाई की चाल चलकर खुदावन का बड़ा गुनाह किया था। और शाह असोर तिगलत पलनासर उसके पास आया, पर उसने उसको तंग किया और उसकी कुमक ना की, क्योंकि आखज ने खुदावंत के घर और बादशाह और सरदारों के महलों से माल लेकर शाह असोर को दिया, तो भी उसकी कुछ मदद ना हुई। और अपनी तंगी के वक्त में भी उसने, यानी इसी आखज बादशाह ने, खुदावंत का और भी ज्यादा गुनाह किया, क्योंकि उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसे मारा था कुर्बानियां की और कहा, चूंकि आराम के बादशाहों के माबूदों ने उनकी मदद की है सो मैं उनके लिए कुर्बानी करूंगा ताकि वो मेरी मदद करें, लेकिन वो उसकी और सारे इसराइल की तबाही का बायस हुए। और आखिज ने खुदा के घर के बर्तनों को जमा किया और खुदा के घर के बर्तनों को टुकड़े टुकड़े किया और खुदावंत के घर के दरवाजों को बंद किया और अपने लिए यरूशलेम के हर कोने में मज़बे बनाए और यहूदा के एक एक शहर में गैर माबूदों के आगे बखोर जलाने के लिए ऊंचे मकाम बनाए। और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को गुस्सा दिलाया और उसके बाकी काम और उसके सब तौर तरीके शुरू से आखिर तक यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलम बंद हैं। और आखिज अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे शहर में, यानी यरूशलेम में दफन किया, क्योंकि वो उसे इसराइल के बादशाहों की कब्रों में ना लाए। और उसका बेटा इस्किया उसकी जगह बादशाह हुआ। दूसरा तवारीख 28वां बाब। आखिज 20 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वो ना किया जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है, जैसा उसके बाप दादा ने किया था, बल्कि इसराइल के बादशाहों की राहों पर चला और बालेम की ढाली हुई मूर्तें भी बनवाई। इसके सिवा उसने हनोम के बेटे की वादी में बखोर जलाया और उन कौमों के नफरती दस्तूरों के मुताबिक जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के सामने से खारिज किया था, अपने ही बेटों को आग में झोंका। उसने ऊंचे मुकामों और पहाड़ों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे कुर्बानियां की और बुखार जलाया। इसलिए खुदावंद उसके खुदा ने उसको शाहे आराम के हाथ में कर दिया। सो उन्होंने उसे मारा और उसके लोगों में से असीरों की भीड़ ले गए और उनको दमिश्क में लाए और वो शाहे इसराइल के हाथ में भी कर दिया गया, जिसने उसे मारा और बड़ी खूनरेजी की। और फिखा बिन रमलिया ने एक ही दिन में यहूदा में से 120,000 को, जो सब के सब सूरमा थे, कत्ल किया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया था। और जेकरी ने, जो इफ्राइम का एक पहलवान था, मासिया शहजादा को और महल के नाजिम अजरी कायम को और बादशाह के वजीर अलकाना को मार डाला। और बनी इसराइल अपने भाइयों में से 200,000 औरतों और बेटे बेटियों को असीर करके ले गए और उनका बहुत सा माल लूट लिया और लूट को सामरिया में लाए। लेकिन वहां खुदावंद का एक नबी था जिसका नाम औदद था। वो उस लश्कर के इस्तकबाल को गया जो सामरिया को आ रहा था और उनसे कहने लगा, देखो, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा यहूदा से नाराज था, उसने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया और तुमने उनको ऐसे तैश में कत्ल किया है जो आसमान तक पहुंचा। और अब तुम्हारा इरादा है कि बनी यहूदा और यरूशलेम को अपने गुलाम और लौंडियां बनाकर उनको दबाए रखो। लेकिन क्या तुम्हारे ही गुना जो तुमने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ किए हैं तुम्हारे सिर नहीं है? सो तुम अब मेरी सुनो और उन असीरों को जिनको तुमने अपने भाइयों में से असीर कर लिया है आजाद करके लौटा दो, क्योंकि खुदावंद का कहरे शदीद तुम पर है। तब बनी इफ्राइम के सरदारों में से अजरिया बिन यहू हन्नान और बरकिया बिन सलुमोत और यहस्किया बिन सलूम और उमासा बिन खदली उनके सामने, जो जंग से आ रहे थे, खड़े हो गए और उनसे कहा, तुम असीरों को यहां से नहीं लाने पाओगे, क्योंकि जो तुमने ठाना है उससे हम खुदावंद के गुनहगार बनेंगे और हमारे गुनाह और खताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारी खता बड़ी है और इसराइल पर कहरे शदीद है। सो उन हथियार बंद लोगों ने असीरों और माले गनीमत को अमीरों और सारी जमायत के आगे छोड़ दिया और वो आदमी जिनके नाम मजकूर हुए उठे और असीरों को लिया और लूट के माल में से उन सबों को जो उनमें नंगे थे लिबास से आरास्ता किया और उनको जूते पहनाए और उनको खाने पीने को दिया और उन पर तेल मला और जितने उनमें कमजोर थे उनको गधों पर चढ़ाकर खजूर के दरख्तों के शहर यरहू में उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब सामरिया को लौट गए। उस वक्त आखिज बादशाह ने असोर के बादशाहों के पास कहला भेजा कि उसकी मदद करें, इसलिए कि अदोमियों ने फिर चढ़ाई करके यहूदा को मार लिया और असीरों को ले गए थे। उस वक्त आखिज बादशाह ने असोर के बादशाहों के पास कहला भेजा कि उसकी मदद करें, इसलिए कि अदोमियों ने फिर चढ़ाई करके यहूदा को मार लिया और असीरों को ले गए थे। और फिलिस्तियों ने भी नशेब की जमीन के और यहूदा के जनूब के शहरों पर हमला करके बैते शम्मस और अलियोन और जदरोत को और शोको और उसके देहात को और तिमना और उसके देहात को और जेमसू और उसके देहात को भी ले लिया था और उनमें बस गए थे, क्योंकि खुदावन ने शाह इसराइल आखस के सबब से यहूदा को पस्त किया, इसलिए कि उसने यहूदा में बेहयाई की चाल चलकर खुदावन का बड़ा गुनाह किया था। और शाह असोर तिगलत पलनासर उसके पास आया, पर उसने उसको तंग किया और उसकी कुमक ना की, क्योंकि आखज ने खुदावंत के घर और बादशाह और सरदारों के महलों से माल लेकर शाह असोर को दिया, तो भी उसकी कुछ मदद ना हुई। और अपनी तंगी के वक्त में भी उसने, यानी इसी आखज बादशाह ने, खुदावंत का और भी ज्यादा गुनाह किया, क्योंकि उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसे मारा था कुर्बानियां की और कहा, चूंकि आराम के बादशाहों के माबूदों ने उनकी मदद की है, सो मैं उनके लिए कुर्बानी करूंगा ताकि वो मेरी मदद करें, लेकिन वो उसकी और सारे इसराइल की तबाही का बायस हुए। और आखिज ने खुदा के घर के बर्तनों को जमा किया और खुदा के घर के बर्तनों को टुकड़े टुकड़े किया और खुदावंत के घर के दरवाजों को बंद किया और अपने लिए यरूशलेम के हर कोने में मजबे बनाए और यहूदा के एक एक शहर में गैर माबूदों के आगे बखोर जलाने के लिए ऊंचे मकाम बनाए। और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को गुस्सा दिलाया और उसके बाकी काम और उसके सब तौर तरीके शुरू से आखिर तक यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलम बंद हैं। और आखिज अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे शहर में, यानी यरूशलेम में दफन किया, क्योंकि वो उसे इसराइल के बादशाहों की कब्रों में ना लाए। और उसका बेटा इस्किया उसकी जगह बादशाह हुआ।